أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ. आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम. हम आपके सामने आज अपने पिछले कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाएंगे और हमारा शीर्षक फिर वही होगा, यानी रोज़े क़ज़ा और उसके कफ़ारे. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में इसी बात को आरंभ किया था और हमारी बातचीत इस स्थान तक पहुंची थी कि वो कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर ये तो वाजिब है कि वो अपने रोज़े की क़ज़ा करे, और उसके साथ साथ उस पर ये भी वाजिब है कि वो हर दिन के बदले में जो वो क़ज़ा कर रहा है एक मुताम यानी 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दे. इस संबंध में हमने आपके सामने दो स्थानों को बयान किया था. आज हम इसी बात को आपके सामने आगे बढ़ा रहे हैं. तीसरा स्थान जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर ये वाजिब है कि वो अपने रोज़े की क़ज़ा करने के अतिरिक्त हर दिन के बदले में 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दे, वो ये है कि कोई इंसान इस प्रकार का मर्ज़ रखता हो कि वो उसको प्यास बहुत लगती हो, यानी वो प्यास का मरीज़ हो, और उसके लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना कठिन हो, बहुत सख्त हो और रोज़ा न रख सकता हो. तो अगर वो इंसान, जैसे कि हमने आपको पिछले उसमें बताया था कि अगर ये इंसान इस प्रकार का है और रमज़ान के बाद क़ज़ा भी नहीं कर सकता है, तो उसके ऊपर केवल एक मुताम वाजिब है. लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी भिन्न है कि इंसान मरीज़ तो प्यास का है, प्यास बहुत लगती, रमज़ान में रोज़ा नहीं रख सकता है, लेकिन रमज़ान के बाद अगर वो क़ज़ा कर सकता है तो उसको चाहिए कि वो हर रोज़े के बदले में क़ज़ा करे, नहीं जितने रोज़े छोड़े हैं उसकी क़ज़ा करे. और उसके अलावा एहतियात वाजिब ये है कि हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दे. फिर नोट कीजिए इस बात को कि इंसान को सख्त है रमज़ान में रोज़ा रखना, लेकिन रमज़ान के बाद में वो क़ज़ा कर सकता है, तब ये स्थिति पेश आएगी. अगर क़ज़ा नहीं कर सकता है रमज़ान के बाद भी, तो उसके ऊपर केवल एक मुताम यानी वही 750 ग्राम खाना ही वाजिब होगा, क़ज़ा वाजिब नहीं होगी. उसके बाद चौथा स्थान जहाँ पर इंसान के ऊपर क़ज़ा भी वाजिब है और एक मुताम भी वाजिब है, वो ये है कि कोई महिला प्रेग्नेंट हो और उसके डिलीवरी का समय करीब हो. अगर महिला प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का समय करीब है और रोज़ा रखना उसके बच्चे के लिए हानिकारक है, यानी जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए नुकसानदेह है अगर रोज़ा रखना, तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि वो रमज़ान के बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करे, और क़ज़ा करने के अलावा हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम खाना फ़कीर को दे. उसके बाद दूसरी स्थिति ये पेश आती है कि महिला प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का समय करीब है, और रोज़ा रखना बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि स्वयं उसके लिए हानिकारक है. तो अगर ऐसा है कि रोज़ा रखना बच्चे के लिए नहीं स्वयं उसके लिए हानिकारक है, तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि वो हर रोज़े के बदले में यानी जो छोड़े हैं उसने रमज़ान में क़ज़ा करे. उसके अलावा एहतियात वाजिब ये है कि हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दिया जाए. उसके बाद ऐसा ही मसला पेश आता है उस महिला के लिए भी जो महिला बच्चे को दूध पिला रही है. अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिला रही है और दूध उसका कम बन रहा है, और अगर वो रोज़ा रखे तो उस रोज़ा रखने के कारण बच्चे को हानि होने ख़तरा हो, बच्चे को नुकसान होने का ख़तरा हो, तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि वो उन रोज़ों को छोड़ दे और उसके बाद रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करे, और क़ज़ा करने के अलावा हर दिन के बदले में 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दे. तो ये स्थिति तब हुई जब बच्चे को हानि और नुकसान का ख़तरा था. अब दूसरी स्थिति वैसे ही पेश आती है जैसे हमने प्रेग्नेंट महिला के बारे में, गर्भवती महिला के बारे में आपके सामने बयान किया कि अगर महिला दूध पिला रही है और ये रोज़ा रखना स्वयं उसके लिए हानिकारक है, बच्चे के लिए हानिकारक नहीं स्वयं उसके लिए हानिकारक है, तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि उन रोज़ों की क़ज़ा करे जो उसने छोड़ा है, और उसके बाद एहतियात वाजिब ये है कि कि हर दिन के बदले में 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दिया जाए। एक और स्थान जहाँ पर इंसान के ऊपर वाजिब ये है कि कज़ा भी करे रोज़े की और 750 ग्राम खाना भी दे, वो ये है कि रमज़ान के रोज़े बीमारी के अतिरिक्त किसी और कारण से छूट गए हों, जैसे कि इंसान रमज़ान में यात्रा पर चला गया और जिसके कारण उसके रमज़ान के रोज़े छूट गए और ये यात्रा और ये कारण उसका चलते चलते अगले रमज़ान तक पहुंच जाता है। तो अगर अगले रमज़ान तक ये कारण रहता है तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि उन रोज़ों की कज़ा भी करे और कज़ा करने के अतिरिक्त हर दिन के बदले में 750 ग्राम खाना भी फ़कीर को दिया जाए। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर इंसान के ऊपर वाजिब ये था कि इंसान कज़ा भी करे और हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम खाना फ़कीर को दिया जाए। उसके बाद कफ़ारे के संबंध में और कज़ा के संबंध में कुछ अहकाम हैं जो इंसान को ध्यान रखने चाहिए, वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जब इंसान के ऊपर कज़ा या कफ़ारा वाजिब होता है, दोनों चीज़ें, इंसान के ऊपर रमज़ान के रोज़े की कज़ा या किसी और रोज़े की कज़ा या कफ़ारा वाजिब होता है, तो उसके कज़ा करने और कफ़ारा देने का समय क्या है। तो इंसान के ऊपर ये वाजिब नहीं है कि जैसे ही कज़ा वाजिब हो रही है वैसे ही कज़ा करे, यानी रमज़ान के अगर रोज़े नहीं रखे तो रमज़ान के बाद जैसे ही ईद का दिन समाप्त हो उसके बाद से रोज़ा रखना शुरू कर दे, कज़ा करना शुरू कर दे, या अगर कफ़ारा वाजिब हो दूसरे दिन कफ़ारा दे, ये वाजिब नहीं है। लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि अगर इंसान के ऊपर कज़ा वाजिब हो रही है तो या कज़ा वाजिब हो रही है या कफ़ारा वाजिब हो, दोनों यहाँ पर शामिल होंगे। अगर एहतियात वाजिब यह है कि अगर इंसान के ऊपर कज़ा और कफ़ारा वाजिब हो रहा है तो अपनी इस कज़ा और इस कफ़ारे को अगले रमज़ान के आने से पहले पहले ज़रूर और अवश्य अंजाम दे दे, यानी ऐसे वाजिब नहीं कि फौरन अंजाम दिया जाए, लेकिन एहतियात वाजिब यह है कि रमज़ान से पहले बहरहाल अंजाम दे दिया जाए। उसके बाद ये कि अगर कोई इंसान कई साल ऐसे बीत जाए कि रमज़ान में रोज़े नहीं रख रहा है किसी भी कारण से, यानी एक रमज़ान छूटा, दूसरा रमज़ान छूटा, तीसरा, चौथा, इस कई रमज़ान छूट गए उसने रोज़े नहीं रखे, अब अगर वो कज़ा करना चाहता है तो कौन से रमज़ान की पहले कज़ा करे, या पहले वाले रमज़ान की, या आखिरी वाले रमज़ान के, या बीच वाले रमज़ान के, कौन से रमज़ान के रोज़े पहले रखे। तो यहाँ पर फ़ुकहा ये कहते हैं किसी भी रमज़ान के रोज़े पहले रख ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतिम रमज़ान के जो उसने रोज़े छोड़े हैं उसके कज़ा के समय इतना कम रह जाए कि अगला रमज़ान आने वाला हो, तो इसके ऊपर वाजिब ये है कि पहले अंतिम रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद जो रमज़ान आ रहा है वो रोज़े रखने, उसके बाद जो रमज़ान आ रहा है वो रोज़े रखने के बाद बाकी रमज़ान के रोज़ों की कज़ा करे। इसके बाद जैसे कि हमने कज़ा के बारे में आपको बताया कि इंसान के ऊपर ये वाजिब नहीं कि तुरंत कज़ा करे, इसी तरह कफ़ारे के ऊपर इसी तरह कफ़ारे के मामले में भी बात है कि इंसान के ऊपर वाजिब नहीं है कि तुरंत जैसे ही कफ़ारा वाजिब हो रहा है वैसे ही कफ़ारा दे, लेकिन बेहतर ये है कि कफ़ारे देने में कोताही न करे, जैसे ही उसके पास कफ़ारा देने की स्थिति हो वैसे ही उसका कफ़ारा अदा कर दे। उसके बाद एक और मसला जैसे हमने आपके सामने जब बात कर रहे थे उसके बीच में कहीं बताया भी था लेकिन फिर आपके सामने बता दूं, वो ये है कि अगर इंसान के ऊपर कज़ा या कफ़ारा वाजिब होता है तो अगर वो कई सालों तक उस कज़ा या कफ़ारे को ना दे तो वो कज़ा और कफ़ारे की मात्रा और गिनती उसके ऊपर बढ़ेगी नहीं बल्कि उसी मात्रा में और उसी गिनती में रहेगी। उसके बाद अगर इंसान रमज़ान के महीने में हराम काम के ज़रिए से रोज़े को तोड़ दे, यानी मान लीजिए रमज़ान का महीना था, कोई इंसान, कोई जवान ईश्वर न करे हस्त मैथुन कर ले, मास्टरबेशन कर ले, अगर इंसान हस्त मैथुन या मास्टरबेशन के ज़रिए से अपने रोज़े को बातिल कर देता है या किसी और हराम कार्य के ज़रिए से अपने रोज़े को बातिल कर देता है तो उसके ऊपर कफ़ारे जम यानी सारे कफ़ारे एक साथ वाजिब होते हैं। सारे कफ़ारे एक साथ वाजिब होते हैं क्या मतलब, जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि कफ़ारे तीन प्रकार के हैं, पहला ये कि एक दास आज़ाद करे, दूसरा ये कि 60 रोज़े रखे, और तीसरा ये कि 60 फ़कीरों को खाना खिलाए। तो अब यहाँ पर स्थिति इस प्रकार होगी कि अगर कोई इंसान हराम काम के ज़रिए से अपने रोज़े को तोड़ रहा है तो उसके ऊपर वाजिब ये कि तीन के तीनों कफ़ारे दे, ये उसके ऊपर वाजिब है। लेकिन यहाँ पर वो लोग, हमारे वो भाई जो आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनेई की तकलीद कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि तीनों कफ़ारे दे बल्कि एहतियात मुस्तहब ये है कि तीन के तीनों कफ़ारे दे। उसके बाद इंसान अगर ऐसा है कि रमज़ान ख़त्म हो चुका है, रमज़ान का महीना समाप्त हो चुका है और रमज़ान के महीने ही कुछ रोज़े छूट गए थे जो उसके ऊपर क़ज़ा वाजिब थी। अब रमज़ान के बाद रमज़ान के महीने की क़ज़ा कर रहा है। अगर इंसान क़ज़ा रोज़ा रखे और क़ज़ा रोज़ा रखने के बाद ज़ुहर के बाद, ज़ुहर के समय के बाद, या फिर आपको एक बात बताऊँ, ये पहले मैं बता चुका हूँ, वो ये कि यहाँ पर हमारा मापदंड ज़ुहर का समय होना है, ज़ुहर की अज़ान होना नहीं है। अगर इंसान ज़ुहर के बाद उस रोज़े को तोड़ दे तो उसके ऊपर वाजिब यह है कि इस रोज़े की जो तोड़ा है इस रोज़े के बदले में 10 रोज़े रखे, और हर एक रोज़े के बदले में यानी उसके बाद एक मुत्ताम भी फ़कीर को दे, यानी 750 ग्राम जो खाना हमने आपके सामने बयान किया था वो भी फ़कीर को दे। और अगर ये खाना फ़कीर को नहीं दे सकता है तो एहतियात वाजिब यह है कि कम से कम 3 दिन रोज़ा रखे, यानी जो 10 रोज़े की हमने वो कहा था 10 रोज़े कज़ा करे, और हर रोज़े के बदले में एक मुत्ताम यानी 750 ग्राम खाना दे। और अगर ऐसा नहीं कर सकता है, फ़कीर को खाना नहीं दे सकता है, तो एहतियात वाजिब उसके ऊपर यह है कम से कम 3 दिन रोज़ा रखे और ये तीन के तीनों दिन एक के बाद एक लगातार हों। तो ये वो स्थान थे, ये वो चीज़ें थी जो क़ज़ा व कफ़ाए संबंधित अहकाम थे जो हमने आपके सामने बयान किए। उसके बाद यही क़ज़ा व कफ़ारे के अध्याय में ही एक और चीज़ बनती है, कुछ स्थान ऐसे हैं जब इंसान के ऊपर ना क़ज़ा वाजिब होती है और ना ही कफ़ारा वाजिब होता है, यानी अगर रोज़ा छूट गया है तो ना उसकी क़ज़ा वाजिब है उसके ऊपर, ना उसको क़ज़ा करना है और ना ही उसके ऊपर ये वाजिब है उसका कफ़ारा दे। वो कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इंसान के ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब नहीं है? सबसे पहला स्थान तो ये है कि अगर कोई इंसान गैर मुसलमान था, वो मुसलमान हो जाए तो जितनी अवधि भर वो गैर मुसलमान रहा था और उन दिनों में उसने रोज़े नहीं रखे हैं, तो अब मुसलमान होने के बाद उसके ऊपर ये वाजिब नहीं है कि अपने गैर मुसलमान दिनों के भी रोज़ों की क़ज़ा करे। अब मान लीजिए कोई इंसान ईसाई या हिंदू था और उसके बाद वो मुसलमान हो गया, तो अब जब मुसलमान हुआ है तो जो रोज़े मुसलमानी के दिनों में उसके ऊपर वाजिब होंगे केवल उन्हीं को रोज़ा रखना होगा, और अगर छूट जाए तो उनकी क़ज़ा करनी होगी। लेकिन वो रोज़े जो हिंदू होने के दिनों में या ईसाई होने के दिनों में उसके ऊपर थे और उसने छोड़ दिए हैं, उनकी क़ज़ा उसके ऊपर वाजिब नहीं और ना ही इसके बदले में उसको कफ़ारा देना होगा। उसके बाद दूसरा स्थान जहाँ पर इंसान के ऊपर ना क़ज़ा वाजिब है ना कफ़ारा, वो ये है कि इंसान बुढ़ापे के कारण रोज़ा न रख सकता हो, और उसके बाद जब उसने रमज़ान के बाद भी उन रोज़ों की क़ज़ा भी ना कर सकता हो, यानी इंसान बूढ़ा था, उन बुढ़ापे के कारण रमज़ान में ये स्थिति नहीं थी कि वो रोज़ा रख सके, और रमज़ान के बाद भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उन रोज़ों की क़ज़ा कर सके, तो ये एक स्थान हुआ। लेकिन अगर वो उन रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है और उसके लिए क़ज़ा करना लेकिन दुश्वार है, यानी अगर रोज़ा क़ज़ा कर सकता है लेकिन क़ज़ा करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा दुश्वार है, तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन रोज़ों के बदले में एक मुत्ताम यानी वही 750 ग्राम खाना जो हमने आपके सामने बयान किया था वो अंजाम दे दे, वो फ़कीर को खिला दे। उसके अलावा ना उसको क़ज़ा करने की आवश्यकता है और ना ही कफ़ारा देने की आवश्यकता है। ये वो स्थान थे जहाँ पर इंसान के ऊपर ना क़ज़ा वाजिब थी ना कफ़ारा, दो स्थान थे जो हमने आपके सामने बयान किए। अब उसके बाद माँ बाप के क़ज़ा रोज़ों की बात आती है कि जो माँ बाप ने रोज़े नहीं रखे हैं और इस दुनिया से चले गए, संसार से चले गए, स्वर्गवासी हो गए हैं, अब उनके क़ज़ा रोज़ों का क्या होगा या क़ज़ा नमाज़ों का क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे फ़ुकहा ये कहते हैं कि अगर माँ बाप ने नमाज़ और रोज़ा क़ज़ा छोड़ के चले गए हैं तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसके ऊपर वाजिब ये है कि बाप की क़ज़ा नमाज और क़ज़ा रोज़े रखे। उसके अलावा एहतियात मुस्तहब ये है कि माँ के भी क़ज़ा रोज़े और क़ज़ा नमाज़ों को बड़ा बेटा अंजाम दे। ये माँ बाप के क़ज़ा नमाज और क़ज़ा रोज़े के बारे में बातचीत थी जो हमने आपके सामने बयान की। इसके अलावा जो बात हमारी बचती है वो इस बारे में बचती है कि जो यात्री है रमज़ान के दिनों में उसके रोज़ों की स्थिति क्या होगी, इसको इंशाल्लाह हम अपने अगले कार्यक्रम में आपके सामने बयान करेंगे। अब आज के प्रोग्राम का अगर हम आपके सामने सारांश बयान करना चाहें तो हमने आज के प्रोग्राम में आपके सामने कुछ वो स्थान बताए जहाँ पर इंसान के ऊपर क़ज़ा वाजिब थी और उसके अलावा एक मुत्ताम देना था, कुछ वो स्थान थे जहाँ पर क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब था, कुछ पूर्ण रूप से अहकाम हमने आपके सामने बताया कि क़ज़ा जैसे कब दी की जाएगी, कफ़ारा कब दिया जाएगा वगैरह वगैरह। उसके अलावा हमने एक और दो बातें आपके सामने इस बारे में बयान की कि वो कौन से ऐसे स्थान हैं जब इंसान के ऊपर ना क़ज़ा वाजिब होती है और ना कफ़ारा। इसके अलावा हम अपने अगले कार्यक्रम में इंशाल्लाह इसी बयान को आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर के हवाले करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।